ओम शांति। यार ऐसे बोला मन से बोला, पहले हम मन से बोलते हैं, फिर प्रेम से बोलते हैं, फिर हम मिल करके एक साज में बोलते हैं। तो वो आवाज, मन का आवाज मन को टच करता है, ऐसा हम अभ्यास करेंगे। मन सा एकदम शांत स्वरूप में स्थित होके फिर हम शांति का आवास निकालेंगे। तो मन सा वाचा हमारी वही हो जाएंगी, जो मेरे मन में वो मेरे मुख में। ओम शांति। अभी हम आपका क्लास सिर्फ एक घंटे का लेते हैं। सार रूप में हम ये जानते हैं कि ये हमारा चरती कला का युग है, पूर्ति कला का युग है। हम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आए तो चार बातों के धारणों के आधार पर आए, उनको चारों को सहज ही हम सबने धारण कर लिया। शायद ही कोई कोई को कठिनाई हुई हो। तो पहला है ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरा सत का संग, तीसरा अन्न की शुद्धि, चौथा आलस का त्याग। फिर दैवी गुणों की दाना तो स्वतः ही हो जाती है। तो चार बातों का धारण करने से, चार बातों को, हम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आ गए। अभी हम ब्राह्मणों को फिर देवता बनना है और ऊपर की मंजिल में जाना है, तो हमें क्या करना होगा? प्रैक्टिकल में हमारी कौन सी ऐसी धारणाएं हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिनसे योग लगने न लगने का कारण आ जाता है? ये भी बहुत बड़ा संगठन है, संगठन में माया भी आती है। प्रभु तो मिलता ही मिलता है, पर प्रभु के साथ माया भी घुस करके आ जाती है। उनका रॉयल रूप ऐसा होता है जो कईयों को पता भी नहीं लगता है कि ये माया है या प्रभु है, क्योंकि माया भी शुद्धता का, पवित्रता का रूप धारण करके आती है, ईश्वरी रूप धारण करके आती है। तो हमें समझना होगा कि इस रास्ते पर इस प्रकार की माया आती है, उनको समझना भी है और उनसे अपने को संभाल करके भी ले जाना है। तो इस मंजिल में हमने अनुभव किया है कि इतनी बड़ी राजधानी की स्थापना बाबा करा रहे हैं, हम बच्चों से धर्म की भी स्थापना कराते हैं, बड़ा भारी धर्म, सबसे मूल धर्म जिसको हम आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं, तो ऊंचे ऊंचे धर्म की स्थापना करा रहे हैं। तो धारणा भी हमारी ऊंची होनी चाहिए। फिर दैवी स्वराज की स्थापना करा रहे हैं, स्वराज, तो स्वराज के लिए भी बहुत अच्छी धारणा चाहिए। और उसके बाद घराना, एक ही घराने वालों का राज होगा सतयुग में, तो उनके लिए भी एक धारणा चाहिए। तो धर्म, राज और घराने की स्थापना के लिए तीन बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात है सत्यता की शक्ति। सत्यता की शक्ति को जानने, पहचानने, मानने और चलने बगैर हम सत्य धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। जो सत्य धर्म की स्थापना करते वो असत्य का काम कर ही नहीं सकते हैं। उनका मन जरा भी नहीं मानेगा कि मैं अब सत्य धर्म की स्थापना करने चला हूं और मैं कोई असत्य कर्म करूं, तो असत्य का मन से त्याग हो जाता है। तो सत्यता एक बहुत बड़ी शक्ति है, सत्यता के पीछे सारा संसार झुकता है। जिसमें सत्यता है उसमें सहन करने की शक्ति आ जाती है, वो कभी भी हिलेगा नहीं, झूठ के पीछे जरा भी नीचे नहीं उतरेगा, कहेगा मरना ही है ना, एक बार तो मरना ही है, सत्य के पीछे में मर जाऊंगा तो भी अच्छी बात है। तो उनको अंदर में शक्ति होती है, सहनशीलता की शक्ति होती है और सरलता की शक्ति होती है, अंदर उनमें कई प्रकार की शक्तियां होती है। तो सत्यता अपने आप में महान है, स्लोगन भी है, जो सच्चा की नाव हिले पर डूबती कभी नहीं है, कभी नहीं डूबी। सच तो बिठो नच, जो सच्चा होगा वो नाचता रहेगा, उसको कभी भी चेहरे में घबराहट नहीं होगी, उनका चेहरा कभी पीला नहीं होगा, क्योंकि सच्ची बात एक बार बोली जाती है। झूठों को कवर कवर करके बोलना पड़ता है, कई बातें झूठों के पीछे कई बातें और झूठी मिलानी पड़ती है, और सच वाला सच तो सच। भाई तुमने ये काम किया, अगर किया ही नहीं होगा तो मैं कैसे बोलूंगी हाँ भाई किया था, पता नहीं याद है या नहीं है, पता नहीं आप कहते हो तो मैं मानती हूँ। वो नहीं बोलेगा, कहेगा हाँ मैंने किया, या तो कोई कहेगा हमको तो मालूम नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, हो सकता हुआ हो, ये भी झूठ कवर डाल देते हैं। किया है उसको पता है, उसके अंदर पता है मैंने ये काम किया है, अगर किया तो सच बोलो, उसमें है क्या। चलो वो तुमको मार देगा ना, बस ना मर जाएंगे ना, पर झूठ बोले ही क्यों, झूठ हमारे को साथ देगा क्या, झूठ हमको धर्मराज से छुड़ाएगा क्या, झूठ वाले की संसार में इज्जत होती है क्या। इज्जत तो उनकी मट्टी में मिली हुई होती है। कई ऐसे कहते हैं बहन जी, यानी झूठ वाले आज देखो राज कर रहे हैं, झूठ वाले ये कर रहे हैं, वो सुख भोग रहे हैं, और जो सच बोलते हैं वो बेचारे सहन कर रहे हैं। मैं कहती हूँ उसके अंदर में ये नहीं होता मैं सहन करता हूँ, वो कहेगा सच्चे के ऊपर साहब राजी होता है, मैं सच बोलता हूँ साहब मेरा मेरे पर जरूर राजी होगा। अंत तक उनके मुख से निकलेगा सच्चे के ऊपर साहब राजी, मनुष्य राजी रहे न रहे, अलग काल के लिए मेरी इज्जत भी चली जाए, परंतु मैं सच्चा बाबा का बच्चा सच बोलूंगा, और सच बोलूंगा तो जो रिजल्ट मेरे सामने आएंगे उसको भोगने के लिए भी मैं तैयार हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं मरता नहीं हूँ किसी से। तो हमको सच्चाई का बल भरना चाहिए, बहुत बड़ा बल है, और इतना बड़ा ऊंचा काम करने जा रहे हैं बाबा के बच्चे, उनको अंदर में फख्र होना चाहिए कि इस ऐसा काम करने के लिए हम निमित्त बने, हमारे मुख से कभी भी हेरा फेरी वाला शब्द नहीं निकलना चाहिए, जो कहे तुम ब्रह्मा कुमार हो गए, तुम ऐसे बोलते हो, तुम भी ऐसे बोलते हो, ये समझो हमने बाबा के नाम और बाबा के ज्ञान की गिलानी करा दी। कई बार हमारे भाई जमीनों के झगड़े होते हैं, आपस में ही मिल जाते हैं, जमीन ले लेते हैं फिर देते हैं नहीं देते हैं, कई उसके अंदर माया ऐसी घुस करके आ जाती है जो अंत में बेईमानी आ जाती है, एक में एक भी आ जाती है तो दूसरे में भी बेईमानी आती है। वो कहते हमने तो फेथ में काम किया, अभी इसने धोखा हमको दे दिया, तो भाई तुमने उसका साथ लिया, अब तुम जानो वो जानो, हम बीच में क्यों पड़ेंगे, कहां तक सच्चाई है ये, कैसा कोई हमारी कोर्ट कचहरी थोड़ी है, तुम लोग आपस में करो और हम तुम्हारा फैसला बैठ करके करें, हमारा इसी के लिए टाइम है क्या, आप आपस में निपटो, जो चाहिए सो करो, पर प्रेम से ज्ञान से, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़े में बाप का नाम बदनाम होगा। सच्चाई उसको रियलाइज करो, ऐसा सच्चा साथी ढूंढो जो उनको रियलाइज करा दे, पर तुमको कभी भी झूठ को सच, सच को झूठ नहीं करना है। ये तो कहते ये वकीलों का काम होता है, झूठ को बिल्कुल सच बनाना और सच को बिल्कुल झूठ बनाना। मैं कहती ये भी कोई बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी कला है झूठ को सच बनाने की, होगा बिल्कुल झूठ और सच ऐसा बनाएंगे जैसे बिल्कुल ही सच्चा है। हम वकील तो नहीं बनेंगे, हम क्या बनेंगे, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, नर से नारायण बनने का, नारी से लक्ष्मी बनने का। तो सत्यता के पीछे बाबा ने ये सब कुछ सहन किया, ये तीन महान शक्तियां, सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और एकता की शक्ति। इन तीन शक्तियों के पीछे निर्भयता की शक्ति आ जाती है, निर्भयता, उनका मन निर्भय रहेगा, जो तीनों में अटल अडोल रहेगा वो समाज को झुकाएगा लेकिन समाज के आगे झुकेगा कभी नहीं। मुझे बाबा की कई बातें याद आती हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान तो बिल्कुल सच्चा है, संसार में हम देने लिए गए तो संसार वाले अच्छी तरह से सुनने लगे, परंतु तो कोई न कोई ऐसा था जो दूसरे धर्म वाला या किसी ग्रंथ को मानने वाला या किसी महात्मा को मानने वाले वो हमारी अपोजिशन करने लगे। तो हम सोचते थे कि चलो ऐसी ऐसी जो बातें हैं ना वो हम क्लियर नहीं करेंगे, पॉलिश किया हुआ ज्ञान सुनाएंगे, सच्चा ज्ञान नहीं सुनाएंगे। अभी पहले हमारे नस्तिक आ जाए, पीछे सच्चा ज्ञान सुनाएंगे। तो हम जब बाबा के आगे कहते बच्ची सच्चे को तो सिद्ध करना है ना तुम बच्चों को, परंतु मिठास से योग युक्त होकर के सच्चे को सिद्ध करो, पर योग युक्त होकर के सच्चे को छिपा करके कवर न करो। तो बाबा की वाणी हमेशा स्पष्ट, मौत सामने आ रहा है, कहता ही कहता आ रहा है, सतयुग आने वाला है, आएगा आएगा आएगा, पक्की बात कहता ही आ रहा है। युग बदलेगा, संसार बदलेगा, संस्कार परिवर्तन से संसार बदलेगा। जो बाबा बात कहता है वो आज से अंत तक एक ही है। हम कहां से चलिए, 65 साल हो गए, 65 साल से ज्ञान तो वही चला रहा है। तो सत्यता को देने की सिर्फ शक्ति ये चाहिए, जरा स्नेह से दे, प्यार से दे। चलो वो गर्म हो जाता है, तुम ठंडी हो जाओ, फिर प्रेम से बात पूछो, फिर प्रेम से उनको समझा दो, पछताओ नहीं, कवर न करो। तो बाबा ने कहा जो सच्चाई में बल है वो सारे संसार को जीत लेता है। हमने देखा बाबा ने जीत लिया, बाबा के सामने कई बातें आई, बाबा आप ऐसे ज्ञान न दो, बाबा आप ऐसे न कहो। एक बार की बात है, गुलजादा जी ने सभा के बीच में सुनाई है, आप भाइयों में से किसी ने सुनी हो तो भी हो सकता, नहीं तो नहीं। एक बार बीच में चीन की लड़ाई लगी थी ना, चीन जापान की लड़ाई, चीन की लड़ाई लगी थी, तो बाबा ने उस समय कुछ वाणी में, अपनी वाणी में शब्द कहे थे कि अरे वो बच्चे क्या मांगते हैं, थोड़ा टुकड़ा उनको दे देना चाहिए, कुछ ऐसे हल्के रूप में बाबा ने कहा था। तो दे देना चाहिए या क्या, मेरे को पूरी बात याद नहीं आती है। तो हमारी रिपोर्ट से चली गई थी, बाबा की वाणी को लेकर के गया, उसने जाकर के राजस्थान सरकार में दिखाई कि दादा ऐसा बोलता है, दादा ऐसा बोलता है। गवर्नमेंट ने तो चार को भेज दिया, वो आए, हमको बाबा से मिलना है, हमको बाबा से मिलना है। तो हमारा भाऊ विश्व किशोर था, वो कहते है ऐसी आई है बाबा से मिलने के लिए, पता नहीं लड़ाई झगड़ा न कर दे। तो वो कहने लगे पिताश्री से नहीं, हमारे पहले बहने निमित्त है, उनसे आप लो, आपको कोई ज्ञान की बात समझ नहीं आई। कहे वो नहीं, हमको दादा से मिलना है, हमको दादा से मिलना है। फिर तो बाबा को पता लगा, बाबा ने कहा आने दो ना बच्चों को, आने दो ना बच्चों को। बाबा के पास आए, बाबा का पिता प्यार, रूहानी प्यार, ऐसा सच्चा प्यार था। बाबा ने प्यार से बिठा करके बोलो बच्चे, बाप के पास आए हो, कुछ बाप को कहना है। तो उन्होंने बहुत प्यार में आ गए, उन्होंने बहुत प्यार से कहा बाबा ऐसी ऐसी बातें हमने सुना है, तो आपने कुछ वाणी में शब्द कहे, फलानी तारीख की वाणी में कुछ शब्द कहे ऐसे। तो बाबा आजकल तो इमरजेंसी चल रही है, तो ऐसे शब्द तो आपको नहीं बोलने हैं, नहीं तो गवर्नमेंट का एतराज है इसमें, और इसलिए हम आपके पास आए हैं। बाबा ने कहा देखो बच्चे, वाणी मैं थोड़ी चलाता हूँ, तो शिव बाबा आता है, वो वाणी चला के चला जाता है, शिव बाबा ही वाणी चलाता है, मैं तो वाणी नहीं चलाता हूँ। तो वो देखने लगे तो ये नहीं चलाता, कौन चलाता है? कहा शिव बाबा आते हैं, वो आता जाता है, शिव बाबा ने आके अपने बच्चों से बात की है। उसमें हो सकता है बाबा ने कुछ कहा, बाप है, बाप कुछ भी कह सकता है। तो कहता है कि अच्छा बाबा, मैं बाबा के प्यार में आ गए, प्रभावित हो गए, चेहरे से व्यवहार से बहुत प्रभावित हो गए। कहा बाबा जब वो आते हैं ना, तो आप जरा उनको कह देना ऐसे ऐसे शब्द न बोले, ऐसे ऐसे शब्द न बोले। कहा अच्छा बच्चे, बाप बच्चों के पास आएंगे, बच्चे बाबा को बता देंगे, ऐसे कह देंगे। फिर बाबा ने उनको आम दिया, यज्ञ की और प्रसाद बच्चों के लिए ले आओ, अच्छे अच्छे आम आए थे ना बॉम्बे से, ले आओ बच्चों को आके दो। बाबा ने उनको आम दे के ऐसा मस्त करके भेज दिया जो उसका मुख ही बंद हो गया। वहां जाके अच्छी रिपोर्ट दी, तभी तो फिर कुछ केस आगे बढ़ा ही नहीं। तो बाबा सच बोलता है, नहीं ऐसे बाबा ने कहा, ऐसा नहीं बोला बाबा ने कहा, शिव बाबा आते हैं जाते हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं, वो पोतरे हैं उनके सामने, अपने पोत्रों के बीच में बात कही होंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा बाबा, वो आते हैं ना, तो आप उसको कह देना कि आगे के लिए ऐसा न करें, नहीं तो गवर्नमेंट कोई ना कोई स्टेप उठा सकती है। तो कभी भी शुरू से लेकर के, चाहे पवित्रता के ऊपर, चाहे इस सत्यता के ऊपर, ऐसा तुम लोग ज्ञान देते हो, बाबा कहते मैं थोड़ी देता हूँ। सच्ची बात है ना, कहते मैं थोड़ी ये ज्ञान देता, मेरे पास तो था नहीं, मैं तो गृहस्थी बाल बचेदा। शिव बाबा के ज्ञान देते, ये शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान है। तो जब शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान बाबा बताता है तो उनको राइट लगता है, महसूस होता है। एक बारी का पवित्रता के ऊपर भी झगड़ा चला, बड़ा भारी झगड़ा चला। वो दादी प्रकाश में ना, उसकी बहन का पति, शुरू शुरू की बात है, वो उनका ससुर कलेक्टर के कोठी में गए और कलेक्टर को कहा कि दादा ऐसा सा करता है, हमारी स्त्री तो हमारी कहना नहीं मानती, मैं विदेश से आया हूँ, वो मेरी बात नहीं सुनती है। वो तो कहती है कि नहीं, मैं लक्ष्मी बन रही हूँ, तुम नारायण बन जाओ। मैं नारायण का ही कहा बनूंगा, मैं विलाज में रहने वाला, तुम यहाँ लक्ष्मी बन के बैठेंगे, मैं कहा जाऊंगा। तो ये मेरी बात नहीं मानती है। तो बाबा को भी कलेक्टर ने बड़े प्यार से बुलाया कि ये हल्का सा है, केस बढ़ न जाए, तो दादा आप हमारी कोठी में आओ, तो हम आमने सामने थोड़ी बात करा के उसको थोड़ा ठंडा कर देंगे। तो उसको बुलाया, बाबा भी आया और दादी प्रकाश मनी आई उन बाबा के साथ। जसोता थी और भी बाबा के रिश्तेदार थे, सगे वाले जो थे वो साथ में थे। तो वो जो था पति, उसका मिजाज बहुत गर्म, बहुत गर्म। वो विकारों को जीत नहीं सकता था, अंदर आग लगी हुई थी बेचारे को। वो बोलता जाए। तो फिर कलेक्टर ने बाबा को कहा कि बाबा आपका सारा ज्ञान बहुत अच्छा है, जब से आपने ज्ञान दिया हमारे इस हैदराबाद सिंध में शांति हो गई है, घर घर में जो कलह कलेश था ना उसमें शांति हो गई है। दादा आपका सारा ज्ञान अच्छा है, आप सिर्फ इस पॉइंट को थोड़ा ढीला कर दो, बस अब इस पॉइंट को ढीला करो, बाकी कौन सा ज्ञान, बाकी तो कॉमन ज्ञान है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये कोई मेरा फरमान नहीं है पवित्र बनो, मैं खुद गृहस्थी, मैं खुद बाल बच्चे दार पोते दोते वाल, मेरे बहू बेटे सब, मेरी बेटियां, वो सब के सब शिव बाबा ने ज्ञान दिया, वो सब उसमें चल पड़े हैं, और मैं अपने बहू को कुछ कह सकता हूँ? वो पवित्रता के धारा में चल रही है, मेरी बेटी चल रही है, मेरी वाइफ चल, सब पवित्रता के धारा। तो ये डायरेक्शन परमात्मा का फरमान, काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। अब जो समझते हम जीत सकते हैं वो अपनाओ, उस ज्ञान को फॉलो करते हैं। ये मेरा ज्ञान नहीं है कि तुम पवित्र बनो, मैं गृहस्थी आदमी कैसे कह सकता हूँ तुम पवित्र बनो, तो ये शिव बाबा के ज्ञान देता है। मैं उसको कैसे ये डायरेक्शन दे सकता हूँ कि आप ऐसी वाणी न चलाओ? वो कलेक्टर भी देख करके मुंझ गया। अब हम क्या कहें, ये कहते हैं मैं नहीं चलाता हूँ, वो चलाता है। तो मुंझ गया, चुप रहा, कहा बस बाकी सारा ज्ञान आपका बहुत अच्छा है, एक पॉइंट को। अब बाबा जानते हैं कि एक ही इस पॉइंट के ऊपर बहुत झगड़े, हमारे जितनी भी बड़ी बड़ी दादियां हैं, बड़े बड़े घरों की है, उन्होंने इस बात के पीछे त्याग किया। एक सत्यता के ऊपर, एक पवित्रता के ऊपर, इन दोनों बातों के ऊपर इतना जबरदस्त त्याग किया, राजाइयां छूट गई उनकी, राजाई नहीं चाहिए, हमको पवित्र बनना है, हमको भगवान के संग वैकुंठ में जाना है। ये भगवान का फरमान है, भगवान का फरमान मानेंगे ना। तो कई माताएं युक्ति से पति को कहती हैं कि आज मुझे सपन आया था, युक्ति है इसमें, सपन में मेरे सामने भगवान आया और भगवान ने मेरे से पूछा बच्ची तुम वैकुंठ में नहीं चलेंगी? तो मैंने कहा हाँ बाबा। तो फिर भगवान ने कहा बच्ची उसके लिए और कुछ नहीं, सिर्फ तुमको पांच विकारों का त्याग करना पड़ेगा। तो मैंने हाँ कर दिया, हाँ मैं आज से लेके पांच विकारों का त्याग करती हूँ। तो अब मैं क्या करूं, मैं भगवान से वायदा कर चुकी हूँ, तो मैं कैसे ये बात आपकी टाल सकती हूँ, भगवान की बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? आप मेरे देह के पति है, वो मेरे आत्माओं का पति है, तो आत्माओं के पति ने मेरे को ऐसे कहा और वो भी मेरे स्वप्न में आया, स्वप्न में आया या साक्षात में कहा? कहा तो जरूर है कि तुम्हें पवित्र बनना है, तभी तुम विश्व की महारानी बन सकती हो। उन्होंने स्वप्न कह करके अपनी बात को उनके आगे युक्ति से रखा। फिर वो कोई पति मानता है, कोई नहीं मानता है, ये झूठ बोलते है, ये कहते है, कुछ भी करे, पर वो उसमें इतनी पकी रही कि त्याग सहज हो गया। पति कहते है तुमको ये सब छोड़ना पड़ेगा, बाल बच्चे सब छोड़ने पड़ेंगे, और ये जो चाबियों का गुच्छा लेके चलती हो, सब माल तेरे पास है, वो चाबियों का गुच्छा भी छोड़ो, ये हीरे जवाहर सब छोड़ो, अगर वहाँ जाना है तो वहाँ जाओ, अगर यहाँ रहना है तो हमारी बीबी बीबी बन के रहो, अगर बीबी बन के नहीं रहना है तो सब छोड़ करके तुम चली जाओ, भले बच्चों को भी छोड़ के जाओ, हम आप ही संभालेंगे। अब दो बातों में से एक बात का निर्णय करो, अभी अभी करो, अभी अभी फैसला करो। अगर आपके सामने ऐसी बात आ जाए तो आप क्या करेंगे? चाबियों का गुच्छा नहीं छोड़ेंगे, आप कहेंगे ये भी चाहिए तो वो भी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, अगर हमारा कोई इस घर में अधिकार नहीं है, ओम शांति। तो बाबा ने उन बच्चों की खातरी करके बड़े प्यार से, रूहानत से, और बाबा स्वमान में थे तो मैं तो इन बच्चों का बाप हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, बच्चे आए हैं पूछेंगे बाप से तो बाप जरूर उतर देगा, बुलाओ बच्चों को बुला। ऐसे बाबा ने प्यार में उनको लाया जो बच्चे एकदम प्रभावित हो गए। तो ऐसे मैं कहती हूँ बाबा ने एक एक कदम उठाया, रूहानत से भी और रुहाब से भी, सच्चाई सदा साथ रही। और पवित्रता में तो बाबा इतना पक्का था, कोई आत्मा मर भी जाती थी ना तो बाबा कहते ये धर्म की अर्थ आत्मा गई, ये अपना भाग्य बना के गई। उसमें बाबा कभी भी ढीलापन नहीं रखता था। कोई कोई माता पूछती बाबा मेरा पति वैसे बहुत अच्छा है, मुझे सब प्रकार का सहयोग देता है, धन का भी सहयोग देता है, परंतु पवित्रता में बिल्कुल नहीं चल सकता है। तो बाबा मैं क्या करूं? बाबा कहती है बच्ची तुम उनको प्यार से वश करो, तुम्हारे पास बहुत शक्तियां हैं, ज्ञान की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, शांति की शक्ति, तुम उनको प्यार से वश करो, वो तुम्हें अपवित्र बनाए और तुम पवित्र अपवित्रता को धारण करके तुम स्वर्ग में चलेंगी, चलेंगी तुम स्वर्ग में ऐसे। तो बाबा रियलाइज कराता था पवित्रता मेन है, पवित्र बनने बिगड़ तुम न योगी बन सकती हो न स्वर्ग में आ सकती हो। तो बाबा स्पष्ट बात, भले कोई चलता है या नहीं चलता है वो उसकी किस्मत जाने, पर बाबा इसमें बहुत ही पक्के थे। घर के अंदर ही किसे हो गए, घर वाले भी देखो ना, बाबा की बहू साथ दिया पक्का और वो नहीं चल सका, आधा में टूट गया बेचारा, बाबा का लौकिक बेटा। कहेंगे ये तो चलो सारी उम्र इनमें तो ताकत है, योग लगाते हैं, सेवा करते हैं, मैं क्या करता हूँ, ऐसा ढंग का नहीं था, तो चला गया कर लौकिक में। जो चल सके वो इधर आ गए, बाबा की बेटी चल सके निर्मरसन था, पति नहीं चल सका। पति ने खुशी से कहा ठीक है, अगर तुम पवित्रता में रहना चाहती हो तो मेरा दिल कहता है तो मैं तुमको तंग नहीं करूंगा, मैं तुमको छुट्टी देता हूँ, भले तुम मेरे को 3 साल के बाद फिर मैं पूछूंगा, फिर अगर तुम छुट्टी देंगे तो मैं दूसरी शादी करूंगा, लेकिन 3 साल मैं तुमको छोड़ देता हूँ, भले तुम अपनी आत्मा को में शांति का पवित्रता का बल भरो। तो आज पति दुनिया में है और पत्नी यहाँ होगी, फिर धीरे धीरे करके पति झुकता है ना, ये पवित्रता में पक्की है, भले वो शादी भी करता है लेकिन उसके बाद भी वो इनके पास आना चाहता है, इनसे शांति की शक्ति लेना चाहता है। किसने तो ऊंचा मर्तबा पा लिया, ये तो बहुत बड़ी शक्ति बन गई। अब मैं अगर भिखारी हूं तो मेरा काम ऐसी शक्तियों के पास जाना। तो पति आता है पत्नी के पास, मिलता है, दृष्टि लेता है, कुछ ज्ञान सुनता है, कुछ समझता है, तो जिन्हों को छोड़ा ना वो सब झुक गए। इसी पवित्रता के कारण 10-12 साल हम सब ने अपने पेरेंट्स ने हमको कहा या इधर हो जाए या इधर हो जाए, तो हमने कहा ठीक है, अगर आप ही हमारे से एक फैसला मांगते हो तो हम भगवान को छोड़ नहीं सकते हैं, बाकी आपको जो चाहिए सो करो, आप कहो तो हम चले जाएंगे, और क्या करें, नौकरी करेंगे, कमाई करेंगे, मशीन चला करके कमाई करके अपना गुजारा करेंगे, बाकी हम ये आप कहेंगे तो ये खाओ पियो हमारे साथ ऐश ऐश्रत करो, ये लाइफ सब बदल गई। अब हम ऐसे मलेच्छ नहीं बन सकते हैं, न हम सिनेमा देख सकते, न हम ऐसा गंदा फैशन कर सकते, न हम आपकी आशाओं को पूर्ण कर सकते हैं, हमको रहना है तो ऐसी योगी लाइफ में, आपको पसंद है तो हम आपकी भी सेवा करेंगे, समाज की भी सेवा करेंगे, नहीं तो आप जैसे कहो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे बीच में ऐसे आप नहीं चल सकेंगे, नहीं चल सकेंगे तो छोड़ दो, फिर हम आप ही अपना करेंगे सरिनवा। तो छोड़ना पड़ा, 12-15 साल छूट गए, उसके बाद फिर भी वो लोग झुके ना, पवित्रता के आगे, सत्यता आगे वे लोग झुके, हम तो नहीं झुके ना, वो हमारे पास आए, आते जाते जब ज्ञान उनको अच्छा लगा तब उन्होंने फिर से निमंत्रण दिया कि आपने सबका कल्याण करना है तो आप हमारा भी कल्याण करने के लिए आओ, हमारे पास आओ। फिर उन्होंने अपने पास रखा, फिर ज्ञान सुना, अच्छा लगा, हमको अलग ही मकान लेकर के दिया कि अलग मकान लेके देते, आप वहां सेवा करो। सेवा करते करते सेंटर खुल गया, उनका भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण। बाबा ने छुड़ाया भी, पर छुड़ाने के बाद जो हमारी जिम्मेवारी है उनका कल्याण करने की, उसको नहीं बाबा ने छुड़ाया। कहा नहीं बच्ची, कौन उसका कल्याण करेगा, तुम श्रेष्ठ शक्ति हैं तो उनका कल्याण करेंगे ना, जब वो मानती हैं और चाहती है तो अब टाइम है, अब आप इनकी सेवा करो। एक माता, उनका पति सेठ था, नामी सेठ था, बहुत पैसे का अपमान था, और वो भी फूला रानी बहुत ही अच्छी एक थी, औरत भी अच्छी थी, पढ़ी लिखी समझदार थी, और उसको पति पवित्रता के ऊपर झगड़ा करने लगा। झगड़ा करके कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। अब कोर्ट क्या करेगी, पति पत्नी, पत्नी कहती है मुझे पवित्र रहना है, एजेड है, कोई छोटी नहीं है, और वो भी बुजुर्ग है, और फिर भी कहते हैं ये पवित्र नहीं रहना, और मैं रहना नहीं चाहता हूँ, ये रहना चाहती है तो हमें इससे अलग होना चाहते हैं। केस चला, केस में जीत गई माता। पति को कहा, मैं तो इसकी कोर्ट में कहा, मैं तो इसकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, अगर ये नहीं रखना चाहते तो ये खर्चा दे, मैं अलग ही अपना कमाऊंगी खाऊंगी, मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं। खैर केस में वो जीत गई। उसके बाद जब वो अकेला रहा तो अकेले में उसको अकेलापन ऐसा खाने लगा, जो चिल्ला चिल्ला करके पत्र लिखा, मैं माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम देवी हो, तुम शक्ति हो, तुम मेरा भी कल्याण करो, मेरे पास फिर आओ, मैं तुमको कोई भी रास्ते में बंधन नहीं डालूंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा ये करो वो करो, तुमको जो करना वो करो, मेरे को भी उस रास्ते पर चलाओ, मैं तुम्हारे साथ माउंट आबू में भी चलूंगा, मैं तुम्हारा ज्ञान भी सुनूंगा, मैं ये भी, पर तुम एक बार आओ। फिर उसने पूछा दादी से, दादी 30 साल वो अलग रहा है, अब 30 साल के बाद वो फिर मुझे बुलाने चाहते हैं, अब क्या करूं, केस में तो माता जीत गई, वो बेचारा अकेला हो गया। फिर शरण पड़ा, दादी ने कहा नहीं शरण पड़ा, अब तुमको जाना पड़ेगा, जाओ जाके उसकी सेवा करो। वो सेवा करके करके भूम भू करके माउंट आबू में भी लेके आई। उसने सभा के बीच में बोला, मैंने कितना इसको तंग किया, क्या क्या किया, पर पैसे के नशे में, अभिमान में, अब मैं फील करता हूँ इनके पास जो शक्ति है वो मेरे पास नहीं है, अब मैं चाहता हूँ ये सना साथ रहे, मेरी अंतिम घड़ी अच्छी बने, मैं दुनियादारी में भी बेकार हो गया, इस इनके पास रहने में भी मैं बेकार हो गया, तो क्यों ना मैं इसको फॉलो करूं, अच्छी चीज को क्यों ना फॉलो करूं। फिर झुके हैं, ऐसी कई मिसाल है ये साधु महात्मा जिन्होंने बहुत बुरी जगह से हम लोगों को देखा, चारों ओर प्रोपेगेंडा की, ये ब्रह्मा कुमारी ऐसी है, ये ब्रह्मा कुमारी बिल्कुल गंदी, पर एक बार माउंट आबू में आए, कॉन्फ्रेंस हुई, इनकी आंखें खुल गई ये सब कुछ देख करके। दूसरे बारी आई तो और प्रभावित हो गए, तीसरे बारी आई तो तीसरे बार आने से बाबा बाबा मुख से निकला, नहीं तो ये लेखराज, इनका लेखराज ऐसा, इनका लेखराज ऐसे बोलते थे, तीसरे बारी तो बाबा बाबा शब्द बोलने लगा कि दादी माँ ने इतना, दादी माँ को बाबा ने तैयार किया है जो आज सारे जगत के उद्धार करने के लिए निमित्त बन गई है, तो झुक गए हैं इतने तक कि दादी आप कभी भी हमारे यहाँ आओ तो ये सारा भवन आपका है, आप आके सेवा करो। तो एक बार हमारी हरिद्वार में दादी चंद्रमणि थी, तो हरिद्वार का एक स्वामी था, वो यहाँ से होके गया था, उसने वहां पर एक भवन दिया, बहुत बड़ा भवन दिया कि वहां आकर के आप बच्चिया बगैर जैसे तुम लोग करते हो ना वैसे मेरा सारा भवन 100 कमरों का मकान है, वो आप यूज करो, बर्तन नए नए, बिस्तरे नए नए, सब कुछ हम आपको देंगे, आप यहाँ वो बट्टी करो। तो बट्टी रखी, तो बट्टी में था भाई आज कुमारियों की बट्टी, उन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा कुमारियों की बट्टी, क्या कुमारों की बट्टी, आज माताओं की बट्टी, आज अधर कुमारों की बट्टी, तो उन्होंने क्या क्या प्रेम, मैंने सब महात्मा थे ना, दो दो तीन दिन महात्मा को एक एक बट्टी के उद्घाटन के समय बुलाया, दो दो दिन की बट्टी रहती थी, तो उन्होंने कहा आज माताओं की बट्टी है, माताएं सब योग बट्टी में बैठेंगे, साधना में रहेंगे, तो स्वामी जी उस बट्टी का उद्घाटन करने के लिए आप आओ। वो देखा ये सब ऐसे बैठी है एकदम जैसे मूर्तियां, और हम महात्मा भी इनके सामने क्या बोले, ये तो है ही पवित्रता की देविया, इनको ज्ञान देने की दरकार ही नहीं है, इनके तो चेहरे ही चमक रहे हैं, हम इनके आगे क्या बोले। प्रेम को कहे बहन जी बस हम दृष्टि दे करके चले जाएंगे। उन्होंने कहा स्वामी जी आप आशीर्वचन थोड़े से, उन्होंने ऐसे कहा तो वो मैं माँ के साथ कुछ बोल ही नहीं सके, सारा टाइम मैं ज्ञान उनका पता नहीं कहाँ चला गया। फिर दूसरे महात्माओं को बोला तो आज कुमारियों की बट्टी है, आज टीचर्स की बट्टी है, एक एक बट्टी में एक एक ग्रुप को देख करके इतने गदगद हो उठे, अंदर ही अंदर बोलते हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो कुमार कुमारियां गृहस्थ में रहने वाले उनकी बट्टी, क्या ये सब योगी है। फिर उनको वहां ज्ञान मिलता है ये सब योग में रहती है, तपस्या करती हैं और पवित्र रहती है, तब उनको पता लगा ये कन्याएं भी पवित्र है, ये माताएं भी पवित्र, ये भाई भी पवित्र। फिर उनका अनुभव पूछा तो उनको बहुत अच्छा लगा, झुक गए को तो पब्लिक की वो करती थी एतराज कि इन ब्रह्मा कुमारियों को महात्माओं के स्टेज पर क्यों लाया जाता है। फिर भी वो कहते हैं 5 मिनट सिर्फ बोलेंगे और कुछ नहीं, जास्ती नहीं, 5 मिनट। 5 मिनट बोला तो 5 मिनट में सभी लोग खड़े होकर के कहते इनका और भाषण रखो, इनका और भाषण रखो, इनका और भाषण रखो। तो जो और मंच पर बैठे महात्मा वो देखने लगे कि मंच पर हमको बुलाया या बहनों को बुलाया, उनको इंसल्ट महसूस हुई। उन्होंने कहा बस अभी पब्लिक का आवाज आया है, 2 मिनट और बोल करके ही चले जाएंगे। तो उसको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, बोला ये सत्यता की देवियां हैं, यहाँ आकर के जो बोलती है वो हृदय से बोलती है, कोई कथा नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई और बात नहीं, आत्मा का ज्ञान, निजी ज्ञान देती है, इसलिए पब्लिक पसंद करती है। फिर उनको भी अच्छा लगा, फिर एक बार हरिद्वार में आया तो और प्रभावित हुआ। फिर उसने कहा दादी अब इतने सालों के परिवर्तन के बाद अब फिर स्वामी निर्मल था वो चला गया, अब मैं उसके सीट पर आया हूँ, मेरी ये भावना है कि अमृतसर वालों ने इतना ऐतराज किया था, अब मैं फिर आप लोगों को बुलाऊं, आप जरूर आओ। पूरी सभा लगी पड़ी थी और वो गुरु के गद्दी पर बैठा हुआ था। फिर जब दादी गई है, दादी जानकी और चंदमणि, तो वो स्वामी इधर से आया, उनको दादियों को साथ लेके उनको तख्त पर बिठा के खुद दंडवत प्रणाम करने लगा, सो गया एकदम। उनके सब चेले चाटी देखने लगे ये क्या, हमारा स्वामी, हमारा स्वामी दंडवत प्रणाम करता है। फिर वहां से उठ करके दादियों की महिमा की और बोला जो कुछ मैं देख करके आया हूँ मैं सुनाने बगैर रह नहीं सकता हूँ, मैं कहाँ गया था, माउंट आबू में गया, मैं हरिद्वार में गया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैं आप सबको भी सत्यता से वाकुफ करना चाहता हूँ, जो बात हो रही है आपको पता लगे आप उसका अनुभव करो। सभा के बीच में जिगर मेमा की कहा ये मेरे गुरु है, मैं 8 साल का था तब मेरे गुरु के पास आती थी, तब हमको पहचान नहीं थी पर हमको बहने अच्छी लगती थी, इनकी धारणा हमको अच्छी लगती थी, कहते थे हम 2 किलो दूध ले जाते थे कि ये देवियां है सारा दिन बोलती है तो ये दूध पिए फल खाए, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी फल ले जाता था, ये 2 फल उठा के रखती थी और 1 पहिया गिलास दूध का, बस हम 2 बारी चाय पियेंगे हमको दूध वगैरह नहीं चाहिए। वो कहते बहन जी आप लोगों मलाई बलाई बना के खा लेना, वो कहते नहीं इस काम के लिए थोड़ी हमको सेवा करनी है, मलाई बना के खानी है, ले जाओ बेटा ये सब बेच जाएगा तो ले जाओ। उसको उसी समय से प्यार था। अब प्रैक्टिकल में देखा हरिद्वार में क्या क्या सेवा इन्होंने की, वो इतना रिगार बैठा अमृतसर के सारी सभा के बीच में उन्होंने दंडवत प्रणाम की और दादियों की महिमा की और कहा मैं खुला निमंत्रण देता हूँ, मैं अपने तरफ से निमंत्रण देता हूँ, जिसको भी देखना है वो माउंट आबू में जाके देखे। बोला सुनने और सुनाने में बहुत बड़ा अंतर होता है, पब्लिक ने जो सुना है वो आप लोगों ने सुना, आपने अपने आंखों से तो देखा नहीं, अभी हम आपको ज्ञान की आंखें देती है, आप देखो नस्ती से देखो बहने क्या सिखाती है। तो ये सब काहे का प्रभाव पड़ा, इतना जो बाबा ने शांति से पवित्रता के बल से हम लोगों को टिकाया तो उनके ऊपर इतने सालों का असर पड़ गया कि बरोबर ये संस्था इतने सालों से चली आ रही है, इन धारणों में ये मजबूत है, इन धारणा में मजबूत है, ये झुक गया सिरनों का। एक बार माउंट आबू में संन्यासियों का झुंड आया पूरा, तो स्वामी क्या नाम है बहुत अच्छा साधु है, सब साधुओं का प्रेसिडेंट है, नाम भूल गए हैं, तो वो मेरे साथ साथ चल रहा था, कहने लगा बहन जी एक बात मैं पूछूं। मैं कहा पूछो। तो कहा ये आपकी संस्था चारों ओर देखते ब्यूटीफुल है, सफाई अच्छाई, क्या बहने खिलाती है, कितना प्यार से खिलाती है, कैसे बनाते हैं, भंडार में शांति लगी पड़ी है, ये कितनी बड़ी कारोबार है, ये कैसे चलती है। तो मैंने हंस करके कहा स्वामी जी कहा हमारे यहाँ 50 भी नहीं टिक सकती है साधु, वो आपस में अंदर अंदर लड़ते झगड़ते रहते, रोज हमको इनके किसी को संभालने पड़ते है, और तुम्हारे यहाँ मैंने कही तो भगवान का कार्य है, भगवान के बच्चे है, यहाँ कोई पेपर तो है नहीं, कोई नौकर चाकर तो है नहीं, बच्चे अधिकारी हकदार दिल से सेवा करते हैं। कहा इसका कारण क्या है। मैंने कहा कारण यह है कि ये सारी मैनेजमेंट माताओं के हाथ में, बस सभी ने जोर से ताली बजाए। कहा हाँ ये ठीक है बहन जी, आप ऐसे न हमारी संस्था में भी 10-10 हजार के खाने का प्रोग्राम बनता है, आप 101 माता ऐसे मौके पर हमको मदद करना, हमको सहयोग देना, भाई हम माताओं को तैयार करें और सहयोग के लिए आपके पास भेजें। मैंने कहा अच्छा। वो देखिए नहीं माताएं कितना काम करती हैं, पकाने का खिलाने का, और बड़े प्रेम से शुद्धि से खाना खिलाती है। कहा पुरुष लोग भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, बुलाते हम लोगों को पर वो नहीं कर सकते जितनी माताओं ने सेवा की। बाबा ने सब साधुओं को भी झुका दिया। सरकार जब आती है हमारे पास सब बोलते हैं कि जो काम आप कर सकते हम नहीं कर सकते हैं। जो चीफ प्राइम मिनिस्टर था पहले कौन था, नरसिंह था कौन, उसने भी सभा में बोला जो काम आप कर रहे हो हम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों में बहुत कमियां है, हम लोगों में बहुत स्वार्थ है, लेकिन आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो पवित्रता और सत्यता ये दो शक्तियां, और तीसरी जो शक्ति है ब्राह्मण में पक्की होनी चाहिए वो एकता की शक्ति। एक बाबा के बच्चे, एक ज्ञान है, एक संगम युग है, एक राजधानी स्थापन कर रहे हैं, अलग अलग धर्म नहीं, अलग अलग मठ नहीं, सबको जहां भी ज्ञान सुनाएंगे सब ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। चाहे ज्ञान किसी ने दिया होगा, ज्ञानेश्वर ने दिया होगा, संतराम ने दिया होगा, फलाने, परंतु वो बनेगा क्या, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी माना एकता। एकता में हमको क्या करना पड़ता है, छोटों को प्यार, बड़ों को रिगार्ड, असमान वाले को सत्कार देके उसकी बात को सुनो और उसको साथ दो। उनके बात को हम काट नहीं सकते हैं। हमारी दादी ऐसे चलती है, मैं आपको वंडर बात सुनाती हूँ। हमारी 15-20 की पार्टी है, मीटिंग होती है, दादी सबसे विचार ले लेंगी, विचार लेकर के फिर दादी को सभी कहेंगे दादी आप फाइनल कर दो। दादी को जिसकी राय अच्छी लगी होंगी बोला हमेशा ही हम ये करते हैं ना, इस बारी मुझे लगता है कि इन्होंने जो राय दी है ये थोड़ी और अच्छी है, ये तो प्रैक्टिस किया, ये भी काम किया, ये इस बारी करके ये करे। सब एक सेकंड में हाँ कर देते, खत्म। मीटिंग हमारी आधा घंटे के घंटे के अंदर समाप्त हो जाती है। एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञान। मेरी बात हो मेरी बात हो मेरी बात हो हमारे यज्ञ के अंदर नहीं चलती है। दादियां भी दोनों दादियां मिलजुल करके ऐसे चलती है पता ही नहीं लगता है, सारी कारोबार देश विदेश की इकट्ठी हो गई है, फोन में ही सुना लेते एक दो को पूरा सहयोग, एक दो को पूरा रिगार्ड। मजाल जो कोई दादी का सामना करे, क्यों दादी को बाबा ने निमित्त बनाया, हम सबको रिगार्ड है, दादी को बाबा ने निमित्त बनाया है, अब दादी जो कहे सो हमको मानना है। हमारी चंद्रमय दादी भी इससे समान है, दोनों समान एकदम एक साथ निकली हुई है, लेकिन दादी कहेंगे चंद्रमय दादी आपको फलां जगह जाना है, हाँ जी, यहाँ न जाकर के यहाँ जाना है, हाँ जी, सब बात में हाँ जी, दादी जान के कहेंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, में देखो कितना बड़ा कार्य हो रहा है। ये दादियों की यूनिटी काम कर रही है, दादी की यूनिटी में बाबा बैठा है, और इसलिए हम सब दादियां सब जुड़ी हुई है। जो दादी ने कहा वो हम मानेंगे, जरूर मानेंगे, क्योंकि हमको बुद्धि में ऐसे बाबा ने ब्रह्मातन के द्वारा दादी को निमित्त बनाया है। तो निमित्त बनी हुई आत्मा जो करती है वो हमको करनी है। तो एकता और यूनिटी, एकता में रहने से यूनिटी पैदा होती है, एकता से ही यूनिटी होती है। यूनिटी से क्या होता है, सबके दिलों पर जीत हो जाती है। सारा संसार हमारे पीछे अभी क्यों पड़ रहा है, कहते ये सारा संगठन इतना बड़ा काम कर रहा है, मिलकर के काम कर रहे हैं, तो अपने आप हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, मानते हैं, सत्कार देते हैं। तो उसमें अगर यानी कहां डिसजुनटिव न हो उसमें हमको झुकना भी पड़े तो झुक जाना चाहिए। बाबा के नाम पर कोई बात ऐसा नहीं अपने आई को दिखाना चाहिए कि मेरी बात मानो मेरी बात मानो, यहाँ ऐसी बात चलती नहीं है। बड़े बैठी हैं, बड़ों से राय ले सकती हो, अगर बड़ा कहने ऐसा न ऐसे तो कह लेना चाहिए, या मैं जा रही जैसे कहे, हम अपने उस बात का क्यों अपमान दिखलाएं। सेवा बाबा की करनी है ना, बाबा को प्रत्यक्ष करना है ना, हमको अपने को प्रत्यक्ष करना है क्या? फिर जिसका प्लान अच्छा हो, मेजोरिटी को जो प्लान पसंद आए वो करना चाहिए। तो इसमें एकता कायम रहती है, एकता में फिर प्रेम होता है, एकता में सारे संसार का झुकाव होता है। तो जहां ये तीन शक्तियां हमारे पास होंगी वहां हमारे अंदर में निर्भयता जरूर होंगी, किसी का भी डर नहीं लगेगा, भगवान का भी डर नहीं, धर्मराज का भी डर नहीं लगेगा क्योंकि हम एक्यूरेट चल रहे हैं, समाज का भी डर नहीं लगेगा क्योंकि कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, अपने मरने का भी डर नहीं, मर भी जाएंगे धर्म के अर्थ तो कोई बात नहीं, मरने में भी हमारे को अपने शरीर में मोह तो है नहीं, हम तो निमित्त बने हुए हैं कुछ कार्य करने के लिए। तो कार्य करने की शक्ति आ जाती है, निर्भयता। बाबा को मानने वाले आए हैं सामने, परंतु बाबा को यही एक बुद्धि दिया कि मुझे तो बाबा ने निमित्त बनाया है, मैं अपने मन से तो कुछ नहीं कर रहा हूं, कराने वाला करा रहा है। अब सामने वाला कुछ भी करना चाहता है तो बाबा को यही निश्चय में है कि मेरा रक्षक शिक्षक सामने खड़ा है। तो आज दिन तक बाबा के शरीर को किसने टच नहीं किया, दूर दूर से कुछ कुछ बोलते रहे परंतु सन्मुख आकर के सब झुक जाते थे और किसी ने भी हाथ नहीं चलाया, हाथ नहीं लगाया, क्योंकि बाबा के संग शिव बाबा था ही था और बाबा के निश्चय में भी वो बात। तो जिसका साई है भगवान शिव बाबा, हाँ उसका क्या आएगा आंधी और तूफान, गीता है ना, तो आंधी तूफान में क्या क्या आ नहीं सकते है। तो निर्भयता की शक्ति भी ऐसी बड़ी है जो चेहरा सदा चमकता रहेगा, जो काम करता है ना वो डरता है, उसकी शिकल पीली पड़ जाती है और वो जब पीली पड़ जाती है तो पकड़ने वाला पकड़ लेता है। छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं कि एक बार एक राजा की रूई चोरी हो गई, चोरी हो गई, तो वजीर को कहा कि भाई तुम जांच करो, मेरी गोदाम से इतनी रूई चोरी हो गई है तो किसने चोरी की, चोर को पकड़ के दिखलाओ उसको सजा एकदम। तो वजीर सियाने होती है, वजीर ने सबको बुलाया, सबको इकट्ठा किया और कहा सब ऐसे सीधे होके बैठो, हाथ सब कैसे हो। तो सभी बैठ गए, फिर उसने सारी नजर घुमाई इधर से उधर, उधर से उधर, सब नजर घुमा करके कहा बस 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 मैंने समझ लिया, मैंने उसे चोर को पकड़ लिया, नहीं तो वो खुद आ जावे सामने, अगर नहीं तो मैं उसको पकड़ूंगा, मैंने पहचान लिया कौन चोर हो सकता है, उसने तो ऐसे अपना अंदाज लगा दिया। कहा जिसने ने चोरी की है ना उसके दाढ़ी में अभी भी तिनका लगा हुआ है, तो जिसने इतने हजारों बैठे हुए हैं किसने भी हाथ हिलाया नहीं, पर जिसने चोरी की ना वो उसने ऐसे खिजली के बाने यहाँ से यहाँ तक करके यहाँ से ऐसे करके थोड़ा देखने लगा कि ऐसे बरोबर तिनका लगा हुआ तो नहीं। वजीर ने उसी समय पकड़ा, इधर आओ इधर आओ, तुमने ऐसे क्यों किया, कहा से खिजली हुई, कहा इधर आओ, कहा तो सच बोलो तुमने रुई चोरी की थी। तो उसकी शिकल पीली हो गई, अंदर बोलता है, अंदर आत्मा बोलती है तो उसके चेहरे में वो पीला ही आ गई। वजीर ने उसी समय उसको पकड़ लिया। तो जो सच होते हैं ना उसमें कभी भी ऐसा पीलापन नहीं आएगा, अरे मर जाएंगे इसमें क्या, निर्भयता से सच्ची बात बोल देना। और जो होगा ऐसा उनमें निर्भयता की शक्ति नहीं होगी, और जो होगा चोर बरोबर तो उसका अंदर खाएगा, अंदर खाएगा तो चेहरा भी बोलेगा। वो पकड़ा गया, उसमें जो सच्चा होता है वो कभी भी पकड़ धक्का में नहीं आता है। तो क्यों ना हम सच्चे को साथी बना ले, मरते दम तक मर जाना है सच सच हमारे मुख से निकले। दादी कुमार का सभा के बीच में बैठी है, साधु सन्यासी महात्मा सब बैठे हैं, उसके बीच में कहती है अपनी बातें सुनाते सुनाते, तो मैंने अपने जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं होगा, सदा जो कुछ बोला वो सच बोला। तो हम सभी भी तो सखी हम दादी के साथी है बैठे हैं, सच बोला है तो हम सबको लगा हाँ बरोबर दादी ने कभी झूठ नहीं बोला, दूसरे ने कहा बरोबर दादी ने झूठ नहीं बोला, यानी वो ना हाँ में जवाब नहीं देंगे। अगर सचमुच ही दादी ने किया है तो दादी बोलेगी हाँ, तो हमको फेथ बैठ गया ना, हजारों के दिल को जीतना ये कम बात है, एक सच्चाई के गुण को धारण करने वाला हजारों लाखों के दिलों को जीत लेता है। इसलिए देखो नंबर वन अपने आप ले जा रही है, किसी ने मुकरर थोड़ी किया, हमारे ग्रुप ने थोड़ी दादी को मुकरर किया, खुद भगवान ने उसको मुकरर किया। बाबा अव्यक्त हुआ, अव्यक्त होने से 3-4 दिन पहले ही दादी को मुंबई से आना हुआ और दादी बाबा ने रोक लिया, स्पेशल रोका है। 2 दिन के अंदर बाबा ने उसको सब प्रकार के डायरेक्शन दे करके, हाँ हाथ में हाथ दे करके, दृष्टि दे करके अपनी सारी शक्ति विल कर दी। क्यों? तो सीट के लायक भी यही थी, पर थी बॉम्बे में, थी सेवार्थ, कोई अपने स्वार्थ से किसी और अपने मकान में नहीं थी, कोई अपने कारोबार के लिए नहीं थी, सेंटर में थी, पर लिटरेचर छपता था तो बाबा ने उसको वहां रखा हुआ था, परंतु सीट को संभालने लायक थी। सच्चाई का बल था, पवित्रता का बल था, बिल्कुल पवित्रता के संस्कार निजी और भगवान में विश्वास और बाबा की आज्ञाकारी सुपुत बची थी। इसलिए भगवान ने ऐसे मौके पर कहते अंत में साहेब राजी होता है, चाहे वो कहां भी है, परंतु साहेब राजी है, फटाफट उसको स्थान पर रख करके ऐसे सेकंड में दृष्टि दी और सेकंड में बाबा अव्यक्त हो गया। आज उसी की ताकत से देखो दादी कैसे कारोबार चला रही है। पूछो कहेंगे मैं थोड़ी करती, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, कोई बोझ नहीं। हम कहते दादी आज फलाने सेंटर का झमेला आपके पास आया, फलाने सेंटर पर ये झमेला हो गया, उन्होंने ये धमकियां दी, हम मरेंगे मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दादी मुस्कुरा करके कहती है मेरे को टेंशन क्यों होगा, बच्चे बाबा के, यज्ञ बाबा का, हम तो निमित्त मात्र राय दे करके जो हमारी बुद्धि में आएगा राय करके उनको जवाब दे देंगे, बाकी हमको पता है भगवान का कार्य, मेरा अपना कार्य थोड़ी है। तो जहाँ अपना ममत्व नहीं है, स्वार्थ नहीं है, शिव बाबा बुद्धि में है तो बोझ बिल्कुल नहीं, आराम से नींद करती है, करती थोड़ी नींद है पर आराम से, टेंशन बिल्कुल नहीं, झमेले बहुत है। आपको पता है नए नए भाई बहन निकलते जोश बहुत होता है, होश कम होता है, जोश इतना होता है कि हम ये इससे सेकेंडरी बने, ये बनता मैं क्यों नहीं बनू, जैसे दुनिया में करते हैं वैसे यहाँ भी करते हैं, ये मैंने सेंटर खोला मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरा नाम क्यों नहीं बुलाया गया। तो जैसे देह अभिमान तो दुनिया में है ही है ना, वो यहाँ भी घुस के आ जाता है देह अभिमान, माताओं को बाबा ने निमित्त बनाया वो भूल जाएंगे। हमारे कारोबार में देखो निर्भय भी बड़ा भाई है, रमेश बड़ा भाई है, बिजमन बड़ा भाई, जगदीश बड़ा भाई सब, पर तो दादी की सीट है तो दादी के बगैर एक कदम भी नहीं उठाएंगे। जमीन लेनी है दादी की स्वीकृति चाहिए, फलाना काम करना है दादी की स्वीकृति, दादी की प्रेरणा चाहिए, कदम उठाने से पहले दादी से पूछेंगे तब चलेंगे। तो बाबा ने इन्हों को चलाया सिखलाया कि वंदे मातरम कर करके चलो तो बच्चे तुम सुखी रहेंगे। तो जगदीश भाई या बिरजमन भाई उनको ये अनुभव है, बड़े बड़े लोगों के पास जाएंगे ना और बड़ा काम बताना होगा, कुछ जमीन का होगा, कुछ और होंगे, कई यज्ञ के कारोबार में बातें आती हैं, तो बहनों को शक्तियों को साथ में ले जाएंगे, बैकबोन खुद होंगे पर शक्तियों को आगे रखेंगे, बहन जी वो बोलती रहेंगी उनसे। तो बहनों के बोलने में कुछ जो कुदरती परमात्मा की शक्ति है, सरस्वती है मुख में, और बहने है वो इस फील्ड में आके बात करती है, तो चाहे मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो उनकी बात को सुनती है, सत्कार देती है और कहती है अच्छा हम काम करेंगे, और पुरुषों से पुरुष टकरते हैं, हाँ हाँ करेंगे करेंगे ऐसे ऐसे बोलेंगे। अब उन भाइयों को अनुभव हो गया, जगदीश कहते नहीं मैं तो शक्तियों के बिगड़ जाऊंगा नहीं, मेरे साथ 2 शक्तियां चलनी चाहिए। बृजमोहन कहेंगे मेरे साथ शक्तियां 2 चलनी चाहिए तब मैं बात करूंगा। तो बैकबोन खुद होगा पर 2 शक्तियों को साथ में लेंगे, क्योंकि उनको अनुभव हो गया कि बाबा ने जो माताओं को निमित्त बनाया है उसमें क्या राज भरा हुआ है। कैसे काम चलता है, लोग झुक जाते हैं। ये करामत है भगवान की। इतना अनुभव तो नहीं है, इतनी शक्तियां पढ़ाई लिखाई की तो है नहीं, पर एक आकार परमात्मा ने ऐसा दे दिया, उसमें शक्ति बढ़ दी है जिससे ये सब काम चलता रहता है। तो जब नए नए बाबा के बच्चे निकलते हैं ना, तो उनको फिर रहता है हम नहीं बोल सकते, क्या इसको ले जाऊंगा, क्या हम नहीं ले जाएंगे, हम खुद ही बोलेंगे। फिर जब हार खाते ना, तब कहते हैं नहीं बहने चले तो अच्छा है। कई बार प्रदर्शनी में ना बहने समझाएंगी तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, अगर भाई ने भाई को समझाना शुरू किया और उसका मिजाज गर्म होगा तो मारना शुरू कर देंगे। वो कितना ही कहेंगे भाई ये तो माताओं भरने की प्रदर्शनी है, मैं तो ऐसे समझाने के लिए आया था, वो मानेंगे नहीं, कहेंगे तुम लोग ऐसा काम करते हो, भाइयों को पकड़ लेंगे। इसलिए कलयुग के जमाने में बाबा ने माताओं को आगे रखा हुआ है कि माताएं आगे होंगी ढाल है, तुम्हारा बचाव है, तुम्हारी भी इज्जत है और माताओं की भी इज्जत है। तो हमारे सब निमित्त बने हुए भाई सब के अनुभव में ये बात जरूर आई होंगी, मैं ये समझती हूँ कि आप भी किसी कार्य कोई बड़ा कार्य करो, माताओं बहनों को आगे रखो, तो आपको लगेगा कि बरोबर माताओं बहनों के कारण इस कार्य में बहुत मदद मिलती है। भगवान ने निमित्त रखा है ना, किसी और ने थोड़ी निमित्त रखा है। ओम शांति।